हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन अनामिका ने अब तुरंत सिक्योरिटी को देख लिया था, जो कि वहां जाकर कब की खड़ी हो गई थी और सिर्फ शालिनी के एक इशारे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शालिनी सिक्योरिटी के द्वारा झलक और अनामिका के साथ मारपीट करती नहीं दिखाना चाहती थी। वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। वो अपनी इज्जत भी बरकरार रखना चाहती थी, ताकि आदित्य और किसी की भी नज़रों में ये न लगे कि उसने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसीलिए वो अपने समाज में अपनी बेस्ट छवि भी बनाए रखना चाहती थी और उन लोगों को वहां से अच्छी तरह से सजा दिलवाकर भी भगा देना चाहती थी। फिलहाल उसने सिक्योरिटी को इशारा किया कि इन्हें उठाकर यहां से बाहर फेंक दो। जल्दी ही 8 से 10 सिक्योरिटी गार्ड आकर झलक और अनामिका को एक बार फिर से घेर चुके थे। अब अनामिका थोड़ा सा घबराते हुए झलक से कहने लगी थी, मैंने बोला था ना कि जरा जल्दी से फोन करो दादाजी को, कहाँ रह गए हैं वो, आखिरकार अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? और मैंने तुमसे कहा भी था कि हम उनके साथ ही चलते हैं, लेकिन तुम जिद करके यहाँ सीधा आ गई, अब पता नहीं क्या होगा। तभी झलक ने गहरी नज़रों से सभी सिक्योरिटी गार्डों को देखा और फिर अनामिका को देखकर बोली थी, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। झलक का इतना कहना था कि अनामिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना इस वक्त अपने शानदार ऑफिस में बैठा हुआ था और आकांक्षा एक बार फिर से उससे मिलने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि अब आकांक्षा को सिद्धार्थ की कंपनी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो झलक न सही तो उसकी डुप्लीकेट ही सही, उसी से काम चलाने की वो पूरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन जिस तरह से झलक के साथ रहने पर उसे जो एहसास हुआ करता था, वो अब अलग ही तरह का था। झलक के साथ जो सुकून और अपनापन उसे महसूस होता था, वो एहसास अभी तक उसे आकांक्षा के साथ नहीं हो रहा था। अंदर ही अंदर कुछ तो ऐसा था जो उसे पूरी तरह से चुभ रहा था। अब रोनित ने मुस्कुराते हुए आकांक्षा का अभिनंदन किया था। उस वक्त सिद्धार्थ किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन आकांक्षा ने ये कह दिया था कि वो बिल्कुल भी सिद्धार्थ खुराना को परेशान नहीं करेगी, वो उसका इंतज़ार कर लेगी। ये बोलकर बड़े ही पोलाइट तरीके से वो सीधा जाकर उसके केबिन में बैठ गई थी। आज वो कहीं और नहीं बल्कि सीधे सिद्धार्थ की ही चेयर पर बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं अपने आप को खुराना इंडस्ट्रीज की मालकिन समझने लगी थी। वो सोच रही थी कि बस कुछ दिन और, बहुत जल्द मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो मैं इस इंडस्ट्रीज की आधी मालकिन ऑटोमेटिकली बन जाऊंगी। मेरी इतनी खुशी कैसी बर्दाश्त करोगी मेरी प्यारी बहन झलक, तुम दुनिया से क्या गईं, मुझे तो तुम दुनिया भर की खुशियां दे गईं। वाकई काश तुम थोड़े वक्त और पहले मर चुकी होती तो शायद मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार तुम दुनिया से तो गईं, लेकिन मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। तुम्हें इस दुनिया से जाते देखना एक अलग लेवल का सुकून देकर गया है। तुम क्या गईं, तुमने हमारी पावर, पोजीशन और सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। अब हमारे पास पॉलिटिकल पावर के साथ साथ सिद्धार्थ खुराना जैसे बिलियनर की भी पावर होगी और हमसे ज़्यादा ताकतवर अब कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ की कुर्सी पर बैठे बैठे आकांक्षा ये सारी बातें अपने मन में सोच रही थी, तभी रौनित ने आकर सिद्धार्थ को इन्फॉर्म कर दिया कि आपसे मिलने के लिए आकांक्षा आई हुई है। सिद्धार्थ ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और सीधा आकांक्षा के पास आ गया। आकांक्षा उसे देखते ही उठ खड़ी हुई और तुरंत जाकर नॉर्मल चेयर पर बैठ गई थी। लेकिन सिद्धार्थ ये देख चुका था कि वो पहले उसकी चेयर पर बैठी हुई थी, फिर भी उसने बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि बड़े ही पोलाइट अंदाज में उससे मिला। तभी जल्दी से आकांक्षा बोल पड़ी थी, वो सिद्धार्थ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या आज हम शाम को होटल चल सकते हैं डिनर के लिए, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक टेबल बुक किया हुआ है। जैसे ही थोड़ी सी नज़ाकत से आकांक्षा ने ये कहा, सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, शाम को ठीक 8 बजे मैं आपको आपके घर से पिक कर लूँगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, आकांक्षा तो मानो हवा में उड़ने लगी थी। उसे याद आने लगा कि पहले जब सिद्धार्थ की सगाई हुई थी, तब उसने कितनी ही बार कोशिश की थी कि वो सिद्धार्थ के साथ वक्त बिता सके, उसके करीब जा सके, लेकिन सिद्धार्थ तो उसे हमेशा ड्राइवर के हाथ ही भेज दिया करता था, वो कभी उसके करीब नहीं आया था क्योंकि झलक उसकी ज़िंदगी में थी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि सब कुछ पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका था। हालांकि उसे सिर्फ और सिर्फ रणविजय का थोड़ा डर था, लेकिन उसने ये भी तय कर लिया था कि रणविजय के साथ उसे क्या करना है। फिलहाल आकांक्षा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर किस करके बोली थी, थैंक यू डार्लिंग, आज शाम को मैं तैयार रहूंगी और आपका फेवरेट कलर पहनूंगी। ये बोलकर आकांक्षा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ सीधा उठकर अपने केबिन की खिड़की के पास चला गया। वो इस वक्त 12th फ्लोर पर था और वहां से आसपास का सारा नजारा देख रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था जो किसी भी तरह से भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक अजीब सा एहसास था और रह रहकर उसकी आंखों के सामने बार बार झलक का चेहरा आ रहा था। पार्टी वाला सीन, तू नाजायज है, तू नाजायज है, ये सब उसे बार बार याद आ रहा था और उसे अजीब सा लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे इस तरह से झलक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे कम से कम उसके लिए एक स्टैंड तो लेना ही चाहिए था। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि नाजायज रिश्तों की उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वैसे भी वो रणविजय को भी एक नाजायज रिश्ते की निशानी ही समझा करता था और इसी वजह से वो उससे बेहद नफरत करता था। ऊपर से झलक यानी कि अपनी बीवी भी नाजायज बन जाए, ये बात वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए उसने अपने दिल को जैसे पत्थर बना लिया था झलक की तरफ से। उसे लगा कि अगर झलक उसके साथ रहती तो शायद वो घुट घुट कर जीती। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। झलक उसका पास्ट थी और आकांक्षा उसका फ्यूचर। इसीलिए उसने ये तय कर लिया था कि वो आकांक्षा से बहुत जल्द शादी करेगा, बल्कि न सिर्फ शादी करेगा बल्कि उसे पूरी तरीके से सबके सामने इंट्रोड्यूस भी करेगा। आखिरकार आकांक्षा में एक अच्छी बीवी बनने की सारी क्वालिटीज थी। वो बेहद सुंदर थी, सुशील थी, समाज में उठना बैठना, बात करने की तहजीब जानती थी, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती थी। इतना ही नहीं, वो शहर का एक फेमस चेहरा भी थी, जो शुरू से ही सिद्धार्थ खुराना की बीवी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार और लायक थी। इसीलिए आज सिद्धार्थ ने अपने मन में ये ठान लिया था कि वो आज के बाद झलक के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा और जितना हो सकेगा सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा के साथ ही टाइम स्पेंड करेगा और उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लेकर आएगा। कुछ न कुछ गहरी सोच में डूबते हुए उसने झलक की यादों को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन करने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अस्पताल में आरव जी की हालत अब काफी हद तक बेहतर हो गई थी। दरअसल उन्हें अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से अटैक जैसा लगा था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। लेकिन जैसे ही उन्हें ग्लूकोज की बोतल और कुछ इंजेक्शन लगाए गए, उनकी हालत धीरे धीरे संभलने लगी थी। उनके ट्रीटमेंट में लगभग 30 से 40 मिनट लग चुके थे। इसी बीच झलक और अनामिका के साथ ऑफिस में काफी कुछ हो चुका था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी।
अब अनामिका ने देर न करते हुए अपना फोन निकाला और सीधा दादाजी को फोन करना शुरू कर दिया था। इससे पहले भी वो कई बार उन्हें कॉल ट्राई कर चुकी थीं, लेकिन हड़बड़ी में दादाजी अपना फोन पहले ही कार में भूल आए थे, क्योंकि उस वक्त वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाने की जल्दी में थे। उन्हें फोन और बाकी चीजों का कोई खास होश नहीं था। लेकिन अब जैसे ही आरव जी की हालत थोड़ी सी स्टेबल हुई, उन्होंने कहा, अब तो हमें ऑफिस जाना चाहिए, वहां झलक और अनामिका बेटी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो पता नहीं वो लोग हमें कितना सुनाएंगी, और तुम झलक को जानते ही हो, उसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं वो क्या हंगामा मचा देगी। ये सुनते ही आरव जी थोड़ा सा झलक से डरते हुए बोले थे। तभी दिग्विजय सिंह जी जोर से हंस पड़े और मुस्कुराते हुए बोले, अरे तू तो दुनिया का पहला बाप है जो अपनी ही बेटी से डरता है। फिर गंभीर होते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मानना पड़ेगा, कितने कम वक्त में झलक ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, और इतना ही नहीं, अब तो लोग उससे काफी हद तक डरने भी लगे हैं, इनफैक्ट उसके गुस्से से, क्योंकि जब उसे गुस्सा आता है तो वो सामने वाले की जान लेने के बारे में भी एक बार नहीं सोचती।